नहीं बन रहा है, इसको बोला
बोला
नहीं कहेंगे, बुद्धू कहेंगे। हाँ, या तो कई बार बाबा ने कहा रात को सोते समय भी अलबेला कैसे होते हैं, बाबा कहते बाबा को याद करके बाद में सोना। ऐसा नहीं कि बातचीत आपस में करते रहे और बात करते करते ही सो जाए बाबा को भूल के, ये भी अलबेलापन है। नहीं, जो बात करना है करके पूरा कर दो, फिर बाबा की याद में बैठ करके बाबा की याद में सोना, ये पूरा अटेंशन। जिसने बाबा को ऐसा रात को नहीं सोए ना, उसका अमृत वेला कभी भी अच्छा नहीं होगा, ये बाबा का कहना है। अगर हमारे अमृत वेला अच्छा नहीं रहा तो मैंने ठीक तरह से रात को बाबा को याद करके नहीं सोई, कुछ ना कुछ अलबेलापन रहा। तो इसके लिए कदम कदम पर हमको अपने ऊपर अटेंशन रखना है, ताकि ये जो माया अभी मोहिनी रूप धारण करके आ रही है ना, उसको हम जल्दी से भगा के बाबा से पूरा वर्षा कंबाइंड रूप में रह करके बाबा के साथ ही घर वापस जाना है। हमारा वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम बाद में चलेंगे। इसलिए अगर साथी बन के चलना है तो ये दो विकार को भगाना है। अगर बाराती में चलना है तो कोई हर्जा नहीं। आपको कैसा चलना है? साथी होकर के। इसलिए खबरदार, होशियार और सावधान अपने आप को, बार बार अपने आप को कान खींचना है, याद दिलाते रहे। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। साल जब हम मधुबन में आते हैं बाप दादा से मिलने के लिए, क्या स्वमान लेकर के हम आते हैं? कौन सी टाइटल हमें याद रहता है? हम कहाँ जा रहे हैं? वैसे देखा जाए तो बाबा के साथ हमारा सर्व संबंध है, फिर भी जब हम खास बाप दादा से मिलने के लिए आते हैं तो मैं समझती हूँ हम सबको यह याद जरूर रहता होगा कि हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं। जो टीचर ने पाठ पढ़ाया है, होमवर्क दिया है, उसको हम करके उनके सामने भेंट करने के लिए हम जा रहे हैं। मैं समझती हूँ आप सबका भी इस बारी बाप दादा से मिलने के लिए आते हुए यही संकल्प मन में होगा, क्योंकि बाप दादा हर मूल्य के अंदर हम सबको स्टूडेंट के रूप से कोई ना कोई होमवर्क देते ही हैं।
और जब हम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हैं और हम पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहला लेसन और अंतिम लेसन दोनों एक ही है। जब हम पहले दिन बाबा के पास आए तो हमको यही पाठ पढ़ाया गया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा अभिमानी बनना है। और हमारा अंतिम पाठ भी वही है, आत्मिक स्मृति में स्थित रहना। परंतु सिर्फ फर्क इतना है, जब हम पहले बाबा के पास आए थे तो सिर्फ हमको ये स्मृति दिया गया था, हम उसका अभ्यास करते रहे, कभी स्मृति कभी विस्मृति। परंतु हमारा अंतिम लेसन में यही फर्क रहेगा कि हम स्मृति स्वरूप बन जाए। जब हम आत्मा की स्मृति के स्वरूप बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप के मालिक बन जाएंगे। तो जब तक हम स्मृति और विस्मृति में आते जाते हैं तो कभी मालिक, कभी अधिकारी और कभी अधीन। तो बाबा ने इस बारी हम सबको यही इशारा दिया है, हम सबका ध्यान खिंचवाया है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये समझे कि मैं समझती हूं मैं आत्मा हूं, नहीं, उसके साथ साथ हम ये भी याद रखें मैं कौन सी आत्मा हूं। अगर हमें ये याद रहता है मैं कौन सी आत्मा हूं, उससे हमको अपनी मालिकपन की स्मृति, अथॉरिटी ऑटोमेटिकली हमको उस सीट पर सेट करने में मदद करता है। तो बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है हम सबको, मैं बाबा का बच्चा हूं, बाबा मेरा है, ये स्मृति तो बहुत अच्छी तरह से रहती है। इसमें बाबा ने हम सबको पास मार्क्स दी है। बालकपन की स्मृति में मैं बाबा का बच्चा हूं, बालक हूं, मेरा बाबा है, ये हमको अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली याद रहता है। बाकी पुरुषार्थ किस बात का हमको करना है, अपने आप का मालिक बनने का। तो जिसको दूसरे शब्दों में बाबा ने कहा कि हमें सदैव यह याद रहे कि हम राजयोगी हैं, यानी राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो इसका मतलब कि हम इस शरीर का राजा है, कर्मेंद्रियों का राजा है, मन बुद्धि संस्कार का राजा है। तो अगर हम राजा की स्मृति में, मालिक की स्मृति में रह करके इन सब को चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको जिस प्रकार से शक्तिशाली रह करके समस्याएं, परिस्थिति, विघ्नों को पार करना है, वो साहस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमको कदम कदम पर अटेंशन रखते हुए आत्मिक स्मृति का अभ्यास करना है। हमको कैसे मालूम कि हम आत्मिक स्मृति का स्वरूप होकर के चल रहे हैं, मन को हम चला रहे हैं या मैं मन मुझे चला रहा है, ये कैसे मैं समझ सकती हूं? क्योंकि जब तक मन बुद्धि संस्कार के मालिक नहीं बने हैं तब तक कर्मेंद्रियां हमारी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि मन बुद्धि संस्कार आत्मा के मिनिस्टर्स हैं। तो अगर राजा मिनिस्टर्स को ही अपने हाथ में नहीं रखे तो प्रजा उसकी बात कैसे मानेंगे? तो हम कैसे अपने आप को चेक करके देख सकते हैं कि हम मन के मालिक हैं, हम मन को जैसा चाहे वैसे हम चला सकते हैं। तो हमारे अंदर दो पावर्स होंगी, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, और उसमें भी खास कंट्रोलिंग पावर, मन को जहां चाहे जितना समय चाहे जिस स्थिति में चाहे उस स्थिति में हमको मन को हम स्थित कर सकते हैं। बाबा ने पिछले मुरली में भी बताया था कि तीन विशेष ब्राह्मण जीवन में बातें आती हैं। एक है मन की चंचलता, दूसरा है बुद्धि की भटकना, और तीसरा है पुराने संस्कार। तो जब हम आत्मा अभिमानी रहते हैं, आत्मिक स्मृति में मालिकपन की स्मृति रहती है, तो उसी समय हमारी बुद्धि जागृत अवस्था में होती है। जब बुद्धि जागृत अवस्था में होती है तो मन में जो भी विचार आता है तो बुद्धि परख सकती है कि ये जो मन में संकल्प आ रहा है वो पुराने संस्कार के आधार से है या नहीं। तो जब बुद्धि की निर्णय शक्ति ठीक काम करती तो हम उस पुराने संस्कार से आधार से जो मन में विचार आता है उसको हम कर्म में नहीं लाएंगे। बुद्धि मन को कन्विंस करके, बुद्धि मन का साथ लेकर के एक होकर के कर्म करेंगे, वो कर्म ऑटोमेटिकली समस्या का समाधान के रूप में होगा। बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है कि संस्कार कैसे बनता है। पहले मन में विचार आता है, फिर उसको बुद्धि साथ देती है, फिर हम कर्म करते हैं, और बार बार वही कर्म हम करते रहे तो वो संस्कार बन जाता है। सो डेफिनेटली हम सब आत्मों के अंदर 63 जन्मों का संस्कार है, और उस संस्कार के आधार से ही मन में संकल्प उठता है। परंतु अगर हम बुद्धि को जागृत रखें तो हम विवेक से काम ले सकते हैं। तो यही हमारे में कई बार कमी हो जाती तो हम थोड़ा अलबेले बन जाते हैं, तो टेक इट फॉर ग्रांटेड, माना ऐसे समझ जाते हैं कि हमको तो आत्मा का ज्ञान है और हम आत्मिक स्मृति में है ही, तो कॉन्शियसली अटेंशन नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते हैं, तो मन बुद्धि को बार बार धोखा दे देता है। तो फिर हम वही कर्म जाकर के कर लेते हैं, वो फिर हमारे सामने विघ्न रूप, समस्या का रूप, परिस्थिति का रूप ले लेता है। तो वास्तव में परिस्थिति क्या है? परिस्थिति बाहर से आती है, और बाहर से कहां से आती है? कोई भी आत्मा अपने आप को भूल करके मन के वशीभूत होकर के काम करते हैं, वही कर्म, वही बोल हमारे सामने परिस्थिति के रूप में आता है। अगर हम मालिक बन करके अपने मन को चलाते हैं तो हमारी बुद्धि जागृत होने के कारण हम उसको कर्म को बदली कर सकते हैं, समस्या के बदले समाधान का रूप ले सकते हैं। तो इसलिए हमको ये जो फर्स्ट लेसन है, मैं आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, ये जो विशेष स्वमान बाबा ने दिया है, इस स्वमान की सीट पर बैठ करके ही हर काम करना है। बाबा ने मिसाल दिया कि कोई भी व्यक्ति ऑफिस में भी कोई भी काम करने के पहले अपनी चेयर पर सेट होते हैं, सीट पर सेट होते हैं, फिर काम कर सकते हैं। तो हमको बाबा ने बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल सीट दिया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, इसी स्वमान की स्मृति स्वरूप होकर के, उसी सीट पर सेट होकर के अगर हम कर्म करेंगे तो कभी भी न मन, न बुद्धि, न संस्कार धोखा देंगे, न कर्मेंद्रिया ही धोखा देंगे। तभी हम अपने आप को सच्चा सच्चा राजयोगी कहला सकते हैं। तो सबसे पहली विधि अपने आप के मालिकपने को बढ़ाने के लिए, अपने आप की मालिकपन की स्मृति स्वरूप में स्थित होने के लिए अपने इस स्वमान को कभी नहीं भूले। तो जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में स्थित होकर के कर्म करना चालू करते हैं तो हमारी राजधानी में आत्मा राजा है, उसकी राज्य में कितने लोग हैं? मन बुद्धि संस्कार मंत्री, पांच इंद्रिया प्रजाएं और पांच तत्व उसके सर्वेंट्स। इतना छोटा सा हमारा राज्य है। तो जब हम इस मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित होते हैं तो सब राज्य में अपनी बात मानना चालू कर देंगे। तो हम इसका एक दिन भी अभ्यास करके देखें कि कैसे हमारा राज्य चलता है। और दूसरी विधि बहुत सहज, हमको कई बार बाबा ने सुनाया है और साकार बाबा की जीवन कहानी में भी हमने सुनी है कि कैसे ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज थे तभी भी उन्होंने ये अभ्यास किया था। रोज सवेरे अमृत वेले के बाद मैं आत्मा राजा अपने राज्य में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की मीटिंग बुलाए, मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रिया सबके साथ मीटिंग करें और हरेक को ड्यूटी बांटे। जैसे आजकल ऑफिसों में, स्कूल में, हर जगह पर काम करने के पहले छोटी सी मीटिंग होती है और मीटिंग में हरेक की जिम्मेवारी दिया जाता है, फिर वो लोग अपनी ड्यूटी पर चले जाते। तो अगर हमको मालिकपने की स्मृति को बढ़ाना है तो हम ये भी विधि अपना सकते हैं, करके देखे, प्रयोग करके अमृत वेले के बाद दो चार मिनट मीटिंग बुलाए और मन को क्या संकल्प करना है आज के दिन, बुद्धि को कहां जाना है और कौन सा संस्कार आज हमको इमर्ज करना है और कर्मेंद्रियों को भी ड्यूटी हम बांट देवे। आंखों से क्या देखना है, मुख से क्या बोलना है, कानों से क्या सुनना है, तो फिर सारा दिन आप फ्री हो जाएंगे। आत्मा राजा इतना काम नहीं रहेगा, सिर्फ सुपरविजन करना पड़ेगा। तो हरेक कर्मेंद्रिय अपने अपने काम में बिजी रहेंगे, सिर्फ हमको बार बार अपनी सीट को याद करते रहना है। और फिर रात को क्या करना पड़ेगा, कचेरी कोर्ट सब राज्य के मेंबर्स को बुला के इंक्वायरी करना पड़ेगा कि हरेक ने अपनी अपनी ड्यूटी ठीक किया। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कोई प्रजा, कोई कोई मंत्री राजा को ही चेयर से उड़ाने की कोशिश भी करते हैं। तो रात के समय अगर हम चेक करके देखें, अगर कोई भी कर्म इंद्रिया या कोई भी मंत्री मैंने जो ड्यूटी दिया अगर उसको नहीं किया है, तो फिर हम कोई पनिशमेंट भी उसको देवे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुख से मुख को हमने ड्यूटी दी थी कि मीठा बोलना है, अच्छा बोलना है, परंतु मुख से ऐसा कोई क्रोध का वचन निकल गया, तो हम मुख को क्या पनिशमेंट देंगे कि फिर दूसरे दिन मौन, मुख से कुछ बोलने का नहीं है, अंतर्मुक्ता रूपी गुफा में मुख का मौन का अनुभव करें। तो इस प्रकार से डिसिप्लिन, कोई भी प्रकार की डिसिप्लिन हम अपनाते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने स्वराज्य के अधिकारी हम बन सकते, क्योंकि मन को दबाना नहीं है। कई बार हम इस प्रकार से राज्य करने की कोशिश करते हैं, मन को दबा करके, तो वो स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते। मन को दबाना नहीं है, परंतु बुद्धि मन को समझा करके, थ्रू डायलॉग, संवाद करके मन के साथ, मन को कन्विंस करके, मन का साथ लेकर के काम करना है। नहीं तो क्या होता है, दबाने से उसी समय मन चुप हो जाता है, परंतु फिर वो मन की चंचलता जागृत हो जाती है। तो ये दूसरी विधि आप अपना सकते हो, रोज सवेरे मीटिंग और रात को कचेरी, तो फिर जो भी कमी होगा तो फिर दूसरे दिन उसका करेक्शन हो जाता है। और तीसरी विधि बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में बताया है कि हर कर्म करने के पहले, भले हम सवेरे मीटिंग बुलाया, हमने काम दिया भी, परंतु कभी क्या होता है, चलते चलते हम कर्म कॉन्शियस बन जाते हैं। एक बार बाबा ने कहा था कि सारे दिन की दिनचर्या में हम अगर देखें ना, देखते हैं कि हम बॉडी कॉन्शियस भी नहीं है, सोल कॉन्शियस भी नहीं है, गॉड कॉन्शियस भी नहीं है, अनकॉन्शियस भी नहीं है, तो क्या है, एक्शन कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस। माने जो कर्म करते हैं ना, बस उसका ही हम सोचते रहते हैं। तो इसलिए वो कर्म योगी होकर के जो करना चाहिए कर्म, वो हमारे से नहीं होता है। कर्म संबंध के बदले कर्म को बंधन के रूप में कर लेते हैं। तो वास्तव में स्वराज्य अधिकारी बनना माना कर्म इंद्रियों को कर्म के संबंध से यूज करना, बंधन से नहीं, माना एक्शन कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस। तो कैसे हम अपने आप को चेक करके देखें कि मैं सारे दिन के अंदर कर्म करते हुए सोल कॉन्शियस रही, एक्शन कॉन्शियस नहीं थी। उसकी तीन निशानियां होंगी। अगर हम स्वराज्य अधिकारी होकर के कर्मेंद्रियों को कर्मचारी के रूप से मालिक होकर के करवाया है कर्म, तो उसमें तीन निशानियां कर्म में दिखाई देंगे। एक तो कर्म क्वालिटी का होगा, जो कर्म हम करेंगे इट्स क्वालिटी, देखते ही मालूम पड़ेगा कि ये कर्म कर्म नहीं है, ये कला है। भगवद गीता में भी लिखा है, योग कर्मसु कौशलम, यानी योगा अगर हम बाबा की याद से, परमात्मा की याद से आत्माभिमानी होकर के कर्म करते हैं, वो कर्म कर्म नहीं, कला के रूप से दिखाई देता, इट हैज क्वालिटी। और दूसरा
जो कर्म हम करेंगे वो एक्यूरेट होगा। ऐसा कोई नहीं कह सकेंगे कि हम बाबा को याद कर रहे थे, बहुत आत्मा अभिमानी थे, इसलिए ये काम गलत हो गई, ये काम करना हम भूल गए, ऐसे बहाना नहीं दे सकते। अगर हम आत्मिक स्मृति में स्थित होकर के करते हैं तो एक्यूरेसी होती है। जिस समय जो कर्म जैसा करना है वैसे ही होगा। और तीसरी बात, कर्म की ब्यूटी होगी, सुंदरता, क्योंकि मन एकाग्र है और मन मालिक होकर के कर्म करवा रहा है तो ऑटोमेटिकली आत्मा का जो गुण है, आत्मा के अंदर जो क्वालिटीज है वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो इसके लिए मालिकपने का जो स्मृति है वो अपनी मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और संस्कार की शक्ति को जिस प्रकार से हम चलाना चाहे चला सके। और विशेष करके बाबा ने कई बार हम बच्चों को समझाया है, करण करावन हार, इसकी जो विधि है वो दोनों प्रकार से हम यूज कर सकते। तो मालिकपने की स्मृति को बढ़ाने के लिए हम आत्मा करण हार है और आत्मा करावन हार भी है। ये स्मृति से हम कर्म करें भी और कराए भी। जैसे बाबा को हम कहते हैं ना करण करावन हार, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर्म करता भी है और करवाता भी है, तो ऐसे मैं आत्मा भी ये कभी नहीं भूले कि मैं करण हार हूं और करावन हार भी हूं, मैं करता भी हूं और कर्मेंद्रियों द्वारा कराने वाला। तो ऑटोमेटिकली ये करण करावन हार की स्मृति से जब हम कर्म करते हैं तो कर्म संबंध के रूप में परिवर्तन हो जाता है, बंधन के रूप में नहीं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कर्म संबंध के रूप में अभी मैं कर रही हूं या मेरा कर्म बंधन के रूप में बन रहा है? समझिए, आप बहुत साधारण कर्म कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या सफाई कर रहे हैं, तो उसी समय अगर मन बुद्धि और बातों में भटकता है, और दूसरी बातों में नहीं, सिर्फ इन बातों में भटकती है मन कि मैं जो ये काम कर रही हूँ ये बहुत अच्छा कर रही हूँ, सभी देखेंगे, मेरी महिमा बहुत करेंगे, सभी को बहुत पसंद आएगा, तो मन बुद्धि इन बातों में भटक रही है, तो कर्म तो पूरा कर दिया। परंतु अगर जिसने वो कर्म देखा उसने कुछ कहा ही नहीं, अच्छा भी नहीं कहा, बुरा भी नहीं कहा, तो आपके मन में व्यर्थ संकल्प आना चालू हो जाएगा कि पता नहीं इसको पसंद आया नहीं आया, इसको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो जब तक आपको कुछ सुनाए नहीं जाए तो आपको शांति नहीं मिलेगा। तो इससे सिद्ध होता है मैं आत्मा मालिक होकर के कर्मेंद्रियों द्वारा करवाया नहीं, परंतु कर्मचारी हमको बंधन में ये कर्म करवाया। तो इसलिए हमको करण करावन हार की स्मृति, खास जो ऑर्डिनरी एक्शंस हम करते हैं ना उसमें जरूर हमको अभ्यास करना है। माना कॉन्शियसली हमको अटेंशन रखना है कि ये काम करते हुए कि मेरी स्मृति कहाँ रही। क्योंकि मैंने ब्रह्मा बाबा की कहानी में सुना है कि बाबा ने कितने साल मैं आत्मा हूं इसका अभ्यास किया, कितने साल तक जिसको भी देखते थे उसको आत्मा फलानी उसके नाम के साथ आत्मा यूज करते थे, तभी तो वो आत्मिक स्मृति पक्की हो गई। परंतु हम लोगों ने सिर्फ पहला पाठ पढ़ लिया, मैं आत्मा हूं, तो बुद्धि में समझ में आ गई, परंतु उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में नहीं लाया, तो अभी तक भी उस पाठ में ही हम कच्चे रह गए। तो इसलिए अभी जैसे मैंने बताया कि हमारा अंतिम लेसन भी वही है, लास्ट जो प्रश्न है ना हमारा, लास्ट क्वेश्चन, जो सबको एक ही क्वेश्चन मिलेगा और उत्तर देने के लिए कितना समय मिलेगा, 1 सेकेंड। प्रश्न एक ही है, समय भी हमको बता दिया है 1 सेकेंड, बाकी स्थान नहीं बताया जाएगा। बाबा ने कहा कि स्थान सबका अलग अलग हो सकता है, परंतु प्रश्न वही है और समय भी निश्चित। कौन सा प्रश्न? 1 सेकेंड में आत्मिक स्वरूप की स्थिति में स्वरूप बन जाना, स्मृति स्वरूप। तो स्मृति स्वरूप की स्थिति क्या होती है? जैसे देह भान की अविद्या, जैसे नहीं वो पांडवों की कहानी सुनाते हैं कि पांडव जब युद्ध में जीत गए वो हिमालय के पर्वत पर जाकर के गल गए, तो उसका मतलब क्या है कि देह अभिमान को गलाना इतनी ऊंची मंजिल है जितना हिमालय पर्वत पर चढ़ना। तो इसके लिए इसको सामान्य साधारण समझ करके नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, तो इसको हमको प्रैक्टिस करनी है लगातार, तभी हम अंतिम क्वेश्चन पेपर में हम पास विद ऑनर हो सकते। तो जैसे बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप की स्थिति क्या होती है, देह भान की अभाव या अविद्या, जैसे कॉपर एज में द्वापर युग में हमको आत्मा की स्मृति के अविद्या, आत्मा क्या होती है, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का गुण क्या है, उसकी स्मृति विस्मृत हो गई ना, तभी तो हम गिरना चालू किया। तो ऐसे अभी हमारी स्मृति आत्मा की इतनी पक्की हो जानी चाहिए, शरीर की स्मृति एकदम विस्मृत हो जाए। तभी तो कहते हैं ना कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, माना इग्नोरेंस अज्ञान हमको आनंद का अनुभव कराता है। वो किसी हिसाब से? देह भान की स्मृति का अज्ञान, तो बच गई आत्मा। तो आत्मिक स्मृति का लगातार अभ्यास हमको स्मृति स्वरूप रहने में मदद करेगा। तो इसका अब अनुभव हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम आत्मा अभिमानी का अनुभव बहुत स्थूल रूप से भी करें। जैसे जब हम पहले ज्ञान में आए थे तो हम किस प्रकार से उसका अभ्यास किया, शरीर को एक मोटर के रूप में देखा, मैं ड्राइवर हूँ, शरीर एक वस्त्र है, मैं आत्मा एक्टर हूँ, माना अलग अलग, शरीर अलग आत्मा अलग। तो उसका कॉन्शियसली हमने प्रैक्टिस किया, उसकी रिजल्ट क्या रही कि आत्मा न्यारापन, शरीर से मैं न्यारी हूँ, इसका अनुभव पहले होने लगा। तो उसका अभ्यास हमको फिर से लगातार करना पड़ेगा, बार बार मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं, मन बुद्धि संस्कार सहित मैं चैतन्य हूं, एक संकल्प लेकर के उसको स्वरूप में लाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हम लंबी कमेंट्री बना करके मंत्र के रूप में हम उच्चारण करते रहे, वो तो हम कर लेते हैं पर स्वरूप में नहीं टिकते। हमने दादियों से बहुत अनुभव सुना है कि बाबा उनको तपस्या कैसे कराते थे, मुरली के बाद पहाड़ों पर ले जाते थे, एक एक संकल्प देते थे, बस उस पर दो दो घंटा उनको योग करना पड़ता था, बस उसी संकल्प की स्वरूप की स्थिति में। तो हम भी ऐसे एक आत्मा का विचार लेवे, जैसे मैं आत्मा सत्य हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं, बस उसी स्मृति की गहराई में चले जाएं और उसका स्वरूप, वो स्थिति हमारी रूप से किसी को दिखाई दे। उसको कहते ना स्वरूप में लाना, चेहरे से, चलन से, कर्म से, वचन से, किसकी स्थिति अभी सच्चित आनंद स्वरूप का है वो इन सब बातों में दिखाई दे। तो ऐसे ही अभ्यास के लिए अपने आप को समय देना पड़ेगा। ते अभ्यास और अटेंशन, ये दो बात की कमी के कारण तो आज हम अपने मन के वश हो जाते। तो जब आत्मिक स्मृति नहीं रहती तो बुद्धि तो सो जाती है ना, तो मन को चांस मिलता है बुद्धि को धोखा देने की, तो फिर से हम पुराने संस्कार के वश ऐसा कोई ना कोई कर्म कर लेते हैं, वही समस्या बन जाता है। तो कर्म करने के बाद आत्मा के अंदर जागृति आती है, बट दैट इज टू लेट। तो बाबा ने कई बार बताया है ना, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। ज्ञानी माना पहले सोच फिर कर्म, अज्ञानी पहले कर्म फिर सोच। तो हमको भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में बार बार याद दिलाया है, जब भी मैं शब्द यूज करो उसके साथ मैं आत्मा हूं जरूर याद आवे, क्योंकि जब मैं आत्मा हूं ये याद आ जाती है तो ऑटोमेटिकली अपने मालिकपन की स्मृति आ जाती है। अगर मैं सिर्फ मैं शब्द यूज करती हूं तो शरीर की याद आने के कारण हम सीट छोड़ देते हैं। तो सीट छोड़ने का निशानी क्या होता है, अपसेट होना, डिस्टर्ब होना और दूसरों को भी अपसेट करना और डिस्टर्ब करना। तो बार बार अपनी सीट को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि अभी अपने को आदत हो गई ना सीट छोड़ने का, मन को बहुत फ्रीडम दे दिया है तो सीट छोड़ने की आदत हो गई है। तो इसलिए एक बारी हमको कहा गया कि चेकिंग सिर्फ रात को करने से भी काम नहीं चलेगा, आजकल हर घंटे में एक बारी हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे राज्य कारोबार, राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। अभी बाप दादा आने वाले हैं परसों, बाकी हमारे पास 48 आवर्स है। तो आप ऐसे समझिए, आप अपने को जैसे पेशेंट सीरियस होता है ना हॉस्पिटल में, उनको कहाँ रखा जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, वहां पर उस पेशेंट की हर घंटे चेकिंग होती है, उसकी ब्रेन वेव्स कैसा चलता है, उसका पल्स रेट क्या है, हार्ट बीट कैसा है, क्योंकि उसी उसी समय दवाई देके उसको ठीक कर देवे। तो अभी हमारे पास 48 आवर्स से बाप दादा आने के पहले अपने आप को हम भी अंतर्मुक्ता रूपी इंटेंसिव केयर यूनिट में अपने आप को दाखिल कर देवे। करेंगे आप में से कौन करेंगे, हाथ उठाइए। अंतर्मुक्ता रूपी इंटेंसिव केयर वार्ड में अपने आप को एडमिट कर देना, फिर हर घंटा चेक करना, क्योंकि जब तक अंतर्मुखी नहीं बनेंगे अपनी चेकिंग नहीं होगा। मोस्टली हमारी चेकिंग दूसरों का होता है, उसको क्या करना चाहिए उसको क्या नहीं करना चाहिए, पर अंतर्मुखी हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो अपनी चेकिंग स्वतः ही चलती। तो उस अंतर्मुखता रूपी कमरे के अंदर अपने आप को देखते हुए हर घंटे में क्या चेकिंग करना है, सबसे पहली हमारी स्मृति क्या रही इस घंटे में, आत्मिक स्मृति रही या देह की स्मृति रही। दूसरा हमारी स्थिति कैसा रहा, क्योंकि स्मृति का स्थिति के साथ संबंध होता है। तो अगर हमारी स्थिति आत्मिक स्थिति होंगी, पावरफुल होगा, तो हम बाहर की परिस्थिति के वश नहीं होंगे, अधिकारी होकर के चलाएंगे, अधीनता नहीं आएंगे। और तीसरी बात चेक करना है अपनी वृत्ति को, क्योंकि वृत्ति जैसा हमारी दृष्टि हो जाती है। क्या हमारी वृत्ति रही, मनोवृत्ति क्या रही। और चौथी बात चेक करना है हमारी दृष्टि को, क्योंकि दृष्टि ही सबसे ज्यादा धोखा देती है, आंखें ही सबसे ज्यादा धोखा देती है। तो इस घंटे में मेरी आंखें कैसी रही। और फिर पांचवी बात मुख, मुख द्वारा हमने किस प्रकार का वचन बोला। आत्मिक रूप में स्थित होकर के बोलेंगे तो हमारा मुख का शब्द अपने को मालूम पड़ेगा। और चौथा बात है कर्म, इस घंटे के अंदर हमने ऐसा कोई कर्म तो नहीं किया जिसके कारण हमारी दिल खाता हो। भले कोई कोई कर्म हम कर लेते हैं, किसी को बताते नहीं है, परंतु हमारा विवेक तो कहता है ना, दिल तो खाता है ना। तो एक घंटे में हमने इन छह बातों की चेकिंग करे, अगर उसमें कुछ कमी पड़े तो उसका सल्यूशन भी हम साथ में रखें। डॉक्टर सिर्फ पेशेंट की चेकिंग सिर्फ नहीं करता है, उसकी दवाई भी साथ में लाता है। तो बाबा ने तो हर परिस्थिति का, हर बात के लिए दवाई भी दे दिया है। तो एक तरफ आप दवाई भी साथ में रखें और चेकिंग भी करें, तो मैं समझती हूँ इतना समय अगर कोई ने पुरुषार्थ ने भी किया हो, 48 आवर्स में आप बहुत अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जब तक हम अपने आप के ऊपर अटेंशन नहीं रखते तो अपने आप की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता। और एक और विधि भी हम अपना सकते हैं कि मालिकपना, जैसे संगठित रूप में हम होते हैं, हर एक आत्मा विशेष है, हर एक आत्मा का विचार भी अच्छा होता है। तो बाबा कहते जब संगठन में होते हो तो अपना विचार सुनाने में मालिक होकर के सुनाओ, मन को दबाना नहीं, मालिक होकर के सुना सकते हैं, परंतु जब संगठित रूप में कोई भी बात का फैसला हो जाता है उसको बालक बनकर के स्वीकार कर लो। तो यहां पर भी मालिक और बालकपन का हमको बैलेंस चाहिए। अगर हम सिर्फ मालिक बनकर के विचार दिया और सोचा कि मेरा ही विचार अच्छा है, वो ही मानना चाहिए, तो फिर बालक बनकर के उसको स्वीकार करने में मुझे तकलीफ होता है, तो वहां ही फिर संघर्ष चालू हो जाता है। तभी तो शास्त्रों में कहते हैं ना, एक ने कहा दूसरों ने मानी, इसको कहते हैं शास्त्र ज्ञानी। तो ज्ञानी वही है जिसके अंदर बालक और मालिकपन की बैलेंस रखने की कला हो। तो इसके लिए दबाना नहीं, स्वराज्य अधिकारी बनना। आज बाबा ने क्या कहा, संगम युग का स्वराज्य कौन सा है, संगम युग की बादशाही कौन सी है, बेफिकर। तो जितना जितना हम मालिकपन की स्मृति में रहते हैं कि हमको बेफिकर बादशाह वही स्वराज्य अधिकार है, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम बेफिकर यानी मालिकपन की स्थिति में स्थित हैं, तो हमको निश्चित है कि हमारा विजय है ही। तो उस निश्चित विजय के आधार से हम निश्चिंत रहेंगे, चिंता कभी नहीं होगा। अगर हमको कोई भी प्रकार की चिंता चलता है मन में कर्म करने के बाद, तो हम स्वराज्य अधिकारी नहीं हुए। तो इसके लिए हम अपने आप को कहलाते हैं हम राजयोगी हैं। तो बाबा को भी हम सबके ऊपर बहुत नशा है कि हमारा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। बाबा की यही आश है ना कि हम सब राजा बने। तो अगर हमारा संस्कार अभी से ही राजा होकर के रहने का रॉयल संस्कार नहीं है, तो वो संस्कार भविष्य में कैसे काम में आएगा। तो भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं उसका थोड़ा सा नजारा अभी ही हमको मालूम पड़ता है। अभी हम सारे दिन के अंदर कितना समय अपने आप के ऊपर राज्य कर सकते, तो इसलिए हमको अपनी बुद्धि को बहुत संभालना है, क्योंकि बुद्धि जब सो जाती है तो मन धोखा देती। तो यही अटेंशन कि बुद्धि सदैव जागृत रहे, बुद्धि के ऊपर कोई भी प्रकार की इन्फ्लुएंस ना हो, बुद्धि के ऊपर कोई भी प्रकार का प्रभाव ना हो, बुद्धि द्वारा सदैव श्रीमत हम पालन करते रहे। क्योंकि बुद्धि में ही मनमत आता है, बुद्धि में ही परमत आती है, और बुद्धि से ही हमको श्रीमत की पालना करनी है। तो अगर हम बुद्धि बाबा को समर्पित कर दें, बुद्धि में भी जो अभिमान है मैं, अगर उसको हम बाबा के आगे समर्पण कर दें, तो ऑटोमेटिकली जब बुद्धि के अंदर नम्रता होंगी तो ऑटोमेटिकली बुद्धि जागृत रहेंगे, तो कभी भी मन और संस्कार धोखा नहीं दे सकते। तो इसका विशेष बाबा आने के पहले बालकपन की स्मृति तो है ही, हम सबको है ही हम किसके संतान हैं, परंतु मैं कौन सी आत्मा हूं। एक एक घंटे में अलग अलग स्मृति आप रखिए। कभी आप सोचिए मैं विशेष आत्मा हूं, कभी आप सोचिए मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, कभी आप सोचिए कि मैं परमात्मा की गिने परमात्मा से ही चुनी हुई आत्मा हूं। ऐसे अलग अलग अपना स्वमान एक एक घंटे के लिए भी आप अलग अलग रखेंगे तो वैरायटी अभ्यास करने में मदद करेगा। तो जैसे ही स्वमान की सीट से हम उतर जाते हैं तो मन बुद्धि संस्कार को चांस मिलता है रूल करने का। तो बाबा ने ये भी निशानी बता दिया है ना, अगर मालिकपने की स्मृति हमारे पास सदा रहा तो दो निशानियां प्रैक्टिकल दिखाई देगा। एक तो हम अपने आप को बहुत डबल लाइट, बहुत हल्का और प्रकाश स्वरूप अपने आप को देखेंगे, डबल लाइट। और दूसरी निशानी बहुत खुशी का अनुभव होगा। ये दो अनुभव की निशानी देखते हुए हम समझ सकते हैं कि हम अपनी सीट पर बैठ करके, हमने स्वमान की सीट पर बैठ करके कर्म किया। और तीसरी बात बाबा ने कहा कि सफलता ऑटोमेटिकली आपका जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगा। तो अभी 48 आवर्स के अंदर हम हर एक अंतर्मुक्ता की अपने अपने प्राइवेट कमरे में चले जाए, क्योंकि इसके लिए कोई कमरा किसी से लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका कमरा है, अंतर्मुक्ता योर प्राइवेट रूम। ब्रुकुटी के कुटिया के अंदर आप चले जाइए और अलग अलग स्वमान की सीट पर बैठ करके इसका प्रयोग कीजिए। और छह बात जैसे हमने बताया था कि घंटे घंटे के अंदर, क्योंकि जब भी मुख से ज्यादा बोलना ही नहीं है, वेस्ट सुनना नहीं है, वेस्ट देखना नहीं है, तो समय बच जाता है ना। अंतर्मुक्ता से यही फायदा है, समय बच जाता है, संकल्प बच जाता है, एनर्जी बच जाती है, सो यू कैन फोकस ऑल ऑफ दैट टुवर्ड्स योर सेल्फ। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे तो जहां पर कोई भी हमारी कमियां है, कमजोरी है, वो स्पष्ट दिखाई देगा। तो उसको हम बाबा के, जो भी बाबा ने विधि दी है, उसको उसी समय उसको यूज करें, युक्ति से मुक्ति। तो फिर हम देखेंगे कि थोड़े समय के अंदर भी बाबा की जो आश है, दादी का भी, दादी जी ने भी यही सुनाया ना कि अभी ये रिजल्ट, मालिक पने की जो नशा है वो कम दिखाई देता है। वो सिर्फ हम अंदर अनुभव ना करें, परंतु हमारे चलन से, चेहरे से और कर्म से दूसरों को दिखाई दे। प्रैक्टिकल निशानी क्या होंगे? हम सब प्रकार के व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। बाबा जो चाहते हैं ना कि समस्या का समाधान बनो, तो हमारे सामने कोई समस्या ही नहीं तो हम समाधान के रूप में और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे अभी हम 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, तो इसी दृढ़ संकल्प से कि हम अभी 48 आवर्स अपने अंतर्मुक्ता रूपी गुफा के अंदर इसका प्रयोग करके बाबा के आगे जो रिजल्ट बाबा चाहते हैं वो हम बाबा के आगे रखें। मालिक पने की स्मृति, बालक पने की स्मृति के साथ साथ बैलेंस, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा? इंस्टेंटली बाबा से ब्लेसिंग्स और आपके अंदर से ब्लिस, आनंद की अनुभूति। तो बैलेंस रखने वालों को ये इंस्टेंट रिटर्न मिलता है, ब्लेसिंग्स बड़ों से, बाबा से और अपने अंदर से ब्लिस। तो ये भी हम साथ साथ में अनुभव करते चले। तो चलिए हम अभी 3 मिनट इसी दृढ़ संकल्प की, दृढ़ संकल्प मन में लाते हुए मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर के अपने स्वराज्य अधिकारी का अनुभव क्या होता है उसका अनुभव करें, कि कैसे मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रिया सब मालिक का ऑर्डर कैसे मानते हैं उसका थोड़ा सा हम अभी अनुभव करते हैं। ओम शांति।